सर्वाणि भूतानि
यस्मिन् सर्वाणि भूतानि
आत्मैव भूतानि आचरण करते करते अपने मन को बिल्कुल शांत निर्विकार अंतर्मुखी विकार से कम करने इस प्रकार का बना लिया। ऐसा नहीं कि कुछ काल बैठे और थोड़ी देर के लिए मन एकाग्र था, ऐसे नहीं, मन ऐसा एकाग्र हो कि सदा एकाग्र रहे, मन सदा शुद्ध रहे, सदा शांत सुंदर रहे, मन का स्वभाव ही ऐसा बन जाए अपने जगत में इस प्रकार से अंदर भाव प्रकार शांत प्रकार तो अब वो अपना आत्मतत्व अपने ही हृदय में व्यक्ति को उपलब्ध होता है। इसलिए तीन लोगों के बाद श्लोक से आत्मस्वरूप का निदर्शन करते हैं कि आत्मा का क्या स्वरूप है, उसके लक्षण क्या है। उन ऋषियों के बोलने का बताने का अपना तरीका है, वैसे दे रहे थे विरोधी शब्दों का प्रयोग करके अपने आत्मस्वरूप का अवलोकन कराते हैं। आत्मा बड़ा दूर भी है, इधर भी है, बाहर भी है, इस प्रकार से विरोधी शब्दों का प्रयोग करते हैं आत्मा का। ये इसलिए करते हैं जिससे कि व्यक्ति सावधान होकर के उसको समझने का प्रयास करे और उसके रहस्य को ढूंढे, स्वयं भी प्रयास करे। आत्मतत्व यद्यपि शास्त्रों में बताया गया है और आचार्य लोग उसका व्याख्या करके उसको समझाते हैं, बताते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए प्रयास भी करते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति स्वयं अपना एफर्ट न करे, अपनी तरफ से उसके लिए प्रयास नहीं करता, ऊपर उठने की कोशिश नहीं करता, उसका आत्मतत्व स्वयं होता नहीं, जानने की कोशिश नहीं करता, जिज्ञासा नहीं होती, तो कोई जितना भी बताता है, कितना भी लिखा है, आत्मतत्व का ज्ञान होता नहीं है। इसलिए व्यक्ति को स्वयं प्रयास करते रहना चाहिए और अधिक से अधिक प्रयास करने के लिए ये ऋषि लोग बार बार उत्साहित भी करते रहते हैं, बार बार उत्साहित करते हैं, अनेक प्रकार से कहते हैं कि उसको जानने का प्रयास करें, स्वयं जानो, अपने आप अपने को जो अपने लक्षणों के बताए देते हैं लक्षणों के आधार पर अपने जीकर अपने आत्मस्वरूप को बन जाते हैं। पिछले जो श्लोक हुए उन श्लोकों में देखा कि आत्मतत्व के कुछ लक्षण हैं, वो एक तो ये आत्मा ही है, सबसे पहली बात ये बताई आत्मा एक है, कि मैं आत्माएं एक नहीं, अनेक आत्माएं हो ऐसा नहीं, जीव भले ही अनेक हो, शरीर भले ही अनेक हो, लेकिन आत्मा एक और वो आकाश की तरह व्यापक, वही एक आत्मा सबके मन में छोड़ के इतना भाष उत्पन्न कर रहा है, हर व्यक्ति अपने आप को चेतन अपने आप के अस्तित्व का अनुभव कर रहा है, उसी आत्मा की कार्य कर रहा है। फिर कहते हैं कि देखें ये आत्मा के लिए सर्वव्यापक है और ये सर्वाधार भी है, सर्वाधार माने इसलिए आत्मा पर ही आश्रित है आकाश, आकाश की सत्ता स्वयं नहीं, ये जो अनंत आत्मा है अपने आप स्वयं प्रकाश स्वरूप है, अपनी सत्ता से विद्यमान है, इस आत्मा पर आकाश आकाश किसी से उत्पन्न हुआ और किसी पर स्थित, ये सब बातें अन्य प्रतिशत देखें तो वहां स्पष्ट हो जाती, वो बात यहाँ नहीं है, केवल यहाँ ये कहा कि देखो किसी पर वायु आश्रित है और वायु पर जल आश्रित है, केवल इतना कहकर के यहाँ छोड़ दिया। अन्य उपनिषदों में विस्तार है, गीता में भी और अधिक विस्तार है, इसलिए जब अन्य उपनिषदों के सबको देखते हैं तो विचार स्पष्ट होते चले जाते हैं और ठीक ठीक समझ में आ जाता है। तैतृय उपनिषद के मंत्र प्रकार से हैं, बोलते हैं ऋषि सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म की ब्रह्म सत्व रूप है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। फिर कहते हैं कि तस्मात् एकस्मात् आत्मनः आकाशः संभूतः, वो जो ब्रह्म है वही आत्मा है और आत्मा से ही आकाश की उत्पत्ति। आत्मनः आकाशः संभूतः, आत्मा से ही आकाश की उत्पत्ति। आकाशात् वायु, आकाश से फिर वायु की उत्पत्ति। और ये उत्पत्ति कैसे होकर के हुई? जब उत्पत्ति होती है ये नाम रूप आत्मा की उत्पत्ति हुई और ये उसी ऊपर जो जहाँ से उत्पन्न हुए थे उस पर आश्रय करते हैं। आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ तो आकाश का ही रूप वो आकाश आत्मा पर ही आश्रय। आकाश से वायु उत्पन्न हुई तो वायु आकाश पर भी आश्रय। वायु से अग्नि उत्पन्न हुई तो अग्नि भी वायु पर ही आश्रय। अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई, जल की अग्नि पर ही आश्रय। जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी पर ही जल का आश्रय। और ब्रह्म ये सब अंततः आत्मा पर ही आश्रय। ये सब आत्मा के रूप में जो प्रशांत फिर स्मरण रखें ऐसे अनेक प्रशांत मिल जाएंगे, जैसे कपास से फिर बनी, कोनी बनी, धागा बना, पत्थर बना, कोटा कमी बनी, तो ये एक के बाद एक बनते चले जाते हैं। लेकिन ये सब अंततः कपास पर ही आश्रित है, कपास के कुछ रहे हैं, उन्हीं की धारा मुख्यता है। इसी प्रकार से एक आत्मा ही के ये समस्त रूप जितने बचपन आ गए, ये सारी सृष्टि जितनी भी है, जितनी भी जड़ सृष्टि विस्तार पाई समस्त ब्रह्मांड महाभूत है, ये सब इसी अपने आत्मा से। और पंच महाभूतों से शरीरों की रचना हुई, हर व्यक्ति के स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर की रचना पंच महाभूतों से हुई। तो ये शरीर भी स्थूल शरीर भी जगत का ये भाग है, सूक्ष्म शरीर भी जगत का ये भाग है, ये सब मिला करके सब जगत ही है। और फिर सूक्ष्म शरीर में और अपने स्थूल शरीर में जो चेतना जो होता है, ये चेतना का अनुभव सीधे आत्मा का है। तो आत्मा ही आकर के इसमें पूरा प्रकाशित हुआ, यहाँ आत्मा की चेतना प्रतीत होती है। तो मन बुद्धि की उपाधि के कारण से वो आत्मा एक जैसी लगता है, मैंने ऐसा लगता है जैसे कि वो चेतना मक्के पर हमारे शरीर में है, उसके बाहर और कहीं अनेत्र नहीं है, अलग की विभक्त हुई की चेतना जो लगती है वो हमारे मन बुद्धि की उपाधि के कारण से लगती है। अन्यथा वो आत्मा अनंत आत्मा है और सर्वात्मा है, ये बात होता है। अब ये बताने के साथ साथ ज्ञान का फल भी बताते जाते हैं और आत्मा के लक्षण का और अधिक स्पष्ट करते जाते हैं। पिछली कल देख रहे थे छठवें श्लोक में कहते थे जो व्यक्ति को इस आत्मा का ज्ञान हुआ तो क्या दिखाई देगा कि मैं तो अनंत आत्मा हूँ और समस्त सृष्टि मुझ में ही स्थित है और समस्त प्राणी मुझ में ही स्थित है और मैं ही समस्त प्राणियों में व्याप्त होकर के सबको चेतना प्रदान कर रहा हूँ। इस प्रकार का व्यक्ति अपने आप में अनुभव करता है तो उसको क्या दिखाई देता है कि एक आत्म तत्व ही सर्वत्र है और आत्मा के अंदर कुछ नहीं है। जब अपने आप को केवल ये देखता है कि मैं ही आत्मा स्वरूप होकर के सर्वत्र विद्यमान हूँ, जगत भी मेरा ही रूप है, समस्त प्राणी भी मेरे ही रूप है और ये रूप भी मुझसे भिन्न कुछ नहीं है, मुझ में ही स्थित है, मुझसे अभिन्न है, ऐसे करके विकास और भेद दृष्टि समाप्त हो जाए। मैं तुम का भेद समाप्त हो, जब मैं तुम करके कुछ नहीं रह गया तो फिर तुम से तत्वगम को सते फिर उसके बाद में किसी व्यक्ति को कोई घृणा हो, द्वेष हो, झगड़ा हो, काशनी हो, द्वेष होती कैसे हो सकता? ये बात तो जब दो होती है तभी होता है। जब हम अपने आप से अपने से कोई किसी को भिन्न करके देखते हैं तो मैं अलग और दूसरा व्यक्ति दूसरा अलग, इस प्रकार से दो दो करके जब हम देखते हैं तभी दोनों में संघर्ष होता है, तभी समस्या उत्पन्न होती है। और दो का देखना माया, मैं और तुम का भेद करके देखना अज्ञान और माया है। माया हटी कि मैंने एक आत्मा ही सर्वत्र है और आत्मा के भिन्न कुछ भी नहीं है, इस प्रकार का एकत्व का दिखाई देना माया से मुक्त हो जाना है या माया से परे चल जाना है और यथार्थ ज्ञान में स्थित होना है। इसलिए आपको स्मरण स्वामी जी जो स्वामी जी कहते हैं मैं और मोर तो माया जीवन गाया, मैं और तुम और मेरा और तेरा, बस ये जो धारणा है ये भावना हमें लगती है ये माया। भले ही हमको लगे कि ये सत्य है लेकिन माया का काम ये भी सत्य दिखाना भी माया का काम है, एक तो विपरीत अनुभव कराना जो सत्य नहीं है वो विचार कोई सत्य दिखाना और उसी में जो है डरता लाना कि ऐसा ही है बस ये प्रभाव माया का है। विचार करते करते माया जो है वो विचार तक नहीं कर सकती, माया सर्वशक्तिमान है और माया को विचार ही नहीं कर सकते, लेकिन माया की एक दुर्बलता है कि माया विचार सहन नहीं कर सकती। विचार करते जा पढ़ते ही माया गण समाप्त, जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक माया यथावत रहेगी और जो आप समझते हैं वैसी लगे ऐसा तो रही गई है सही। जब विचार करना शुरू करेंगे तो गल जाएगी माया समाप्त हो जाएगी, इससे माया का माप हो जाता है, आज कम से निगेट हो जाती है, शत्रु विभाजित हो जाता है। जब सब लोग विभाजित हो जाता तब दिखाई देता है कि आत्मी जो स्वयं अपनी सत्ता से विद्यमान थे वही सर्वत्र विद्यमान और सत्य वही है, वही अपना स्वरूप भी है और वही वही सत्य भी है, यथार्थता वही है, ये बात समझ आ जाती है। अब इसी आत्मसत्व के संबंध में कुछ और बात इस श्लोक में बोल रहे हैं, आप हमारे श्लोक देखते हैं इसमें कहते हैं यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मिक बात कुछ विचार हो रहा, आप कहते हैं यस्मिन जिस अवस्था में व्यक्ति इसको विचार करते हुए और अपनी साधना करते हुए चिंतन करते हुए अंततः अपने आत्मस्वरूप पर पहुंचता है तो उसे क्या अनुभव होता है कि सर्वाणि भूतानि आत्मिक बात विजानता समस्त प्राणी में है वो अपने आत्मस्वरूप ही है, आत्मस्वरूप ही है सब प्राणी। जैसे हम अपने आप को समझते हैं कि ये शरीर मेरा ही स्वरूप रूप है, मन बुद्धि प्राणी मेरे ही रूप है, ऐसे यही मेरे रूप नहीं है, समस्त प्राणियों के जितने भी शरीर हैं जितने मन बुद्धि हैं सब मेरे ही, मुझसे जितने कहीं कोई नहीं है, ऐसा ज्ञान यहाँ आ गया, एकत्व का दर्शन यहाँ आ गया, उसकी बात कह रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि तत्व पूर्णोभा तत्व मोह मोह के कारण समझने अज्ञान कहा जाता है, जहाँ ज्ञान का उदय हो गया सत्य का दर्शन हो गया कि एक आत्मा ही सर्वत्र है और आत्मा का ही मत जगत जो समस्त प्राणी है उनसे भिन्न कोई कुछ नहीं है, ऐसा करके दिखने लगा और ज्ञान मिट गया। सत्य को आत्मे प्रभु कामो कदम और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आगे कहते हैं सत्य भोगो का, तो यदि मोह नहीं रहेगा तो शोक भी नहीं रहेगा, शोक का संबंध मोह से पहले तो बात की गई आत्मज्ञान हुआ सर्वत्र देखा एक आत्मा ही सर्वत्र विद्यमान है तो अज्ञान मिट गया और मोह मिट गया। मोह के माने आसक्ति मात्र नहीं है, मोह के माने ये भी है कि सत्य का ज्ञान न होना, असत्य को सत्य समझना और बिल्कुल असत्य वस्तु में ही आसक्ति होना मोह। अब जहां मोह नहीं रहेगा तो फिर शोक, जब मोह होता है तभी शोक होता है, बिना मोह के शोक नहीं होता, शोक होता है लोगों को, हम सब लोग शोक का अनुभव करते हैं कि शोक होता है, लेकिन तत्काल उसके साथ ही यदि जैसा कि शास्त्र कहते हैं उपनिषद कहते हैं ऋषि कहते हैं उसी के अनुसार हम अपना ध्यान दें कि हमें जो शोक हो रहा है क्यों शोक हो रहा है, हमारा मोह कहाँ है, मोह जहां हम देखेंगे कहीं मोह है वही शोक हो रहा है। कल्पना करें मान लो उस वस्तु में मोह न हो तो क्या शोक होगा, किसी व्यक्ति के सारे जीवन की घटी हुई संपत्ति चोरी गए सारी नष्ट हो गया तब उसके बाद बड़ा दुख हुआ चला गया था, पर दुख क्यों हुआ उसके चले जाने पर, आप तो कहें भाई उसका धन चला जाए दुख हो गई, धन चला जाए तो दुख हो गई, ये सब तो आप बोलते हैं, लेकिन धन चले जाने पर तो क्यों होता, क्योंकि धन में वो था आसक्ति थी अटैचमेंट था इसलिए दुख होता, यदि धन में आसक्ति न होती आपको वैसे ही भाग लगा होता, ये धन हमारे पास है ये संदर्भ है ये कोई से नहीं और कहीं देखने में कहीं कोई उठा ले जा सकते हैं, हम देखने जा रहे थे सब कैसे दुख होगा, संसार में जितने व्यक्ति हैं लेकिन जिस व्यक्ति के साथ हमारी मोह और आसक्ति होती है वो अगर मर जाता है तो दुख हो रहा है, और दूसरे इतने प्राणी में से कोई मर जाए तो दुख है, कोई दुख नहीं। अरे प्राणी तो मरते ही रहते हैं, कोई शरीर धारण किए, कोई शरीर धारण करता, कोई शरीर आता है, जाता आता जाता है, सब जगह नियम हो रहा। लेकिन हर व्यक्ति के साथ में रोते थोड़े पड़ते हैं कि हाय हाय ये मर गया, हाय ये मर गया, रोते थे सबके साथ में। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ में अपने मोह उत्पन्न कर लिया, आसक्ति उत्पन्न कर ली, बस उसके मरते हैं। आप परीक्षा करके देखो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे यश हो, चाहे कीर्ति हो, चाहे लाभ हो, कोई भी प्रकार की कहीं भी हो, जहां जहां हमारा मोह आसक्ति जहां जहां होगी उसी के बिना होने से दुख होगा ही होगा। तो देखो ऋषियों ने कैसे खोज किया कि अगर हम शोक से निवृत्त होना चाहते हैं तो हमको मोह नहीं करना चाहिए। मोह कैसे छूट जाए? मोह छूटने का तरीका ये है कि यदि हम अपने आत्मस्वरूप को पहचाने और देखें एक आप ही सर्वत्र है, आत्मा के अंदर कहीं कुछ है, तो फिर कहीं कोई मोह का प्रश्न नहीं। इसलिए कहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए भी आवश्यकता है। अगर युग में जो आत्मज्ञान प्राप्त करने लगे इसी जगह हम अपने काम करेंगे, चार पैसे कमाएंगे। अरे चार पैसे कमाते रहोगे तो दुख में पड़े ही रहोगे। लेकिन यदि आत्मज्ञान प्राप्त करने चलोगे, आत्मा का ज्ञान हुआ, तत्व ज्ञान हुआ, और उसके काम से अगर वो नष्ट हो जाता है तो शोक भी नष्ट हो जाता है। इनके स्तुतियों के और विष्णुओं के जो वचन है, इनके वचन की सत्यता की परीक्षा करनी जारी कर दे। ये विज्ञान है, जैसे सिद्धांत के क्षेत्र में जैसे विद्यालय है तो उसमें जहाँ साइंस पढ़ाई जाती है तो उसमें दो प्रकार के क्लास होते हैं, थ्योरी के प्रैक्टिस के, एक लेबोरेटरी होती है, वहाँ जाकर के लोग वो अपना प्रयोग करते हैं, और उसके पहले सिद्धांत का कक्षा होती है, थ्योरी जहाँ पढ़ाई जाती है। जहाँ थ्योरी पढ़ा दी, बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया सब, तब छात्र जाकर के अपने व्यवस्था करके उसी प्रकार से ले करके प्रयोग करते हैं, प्रयोग कर करके देखते हैं, और प्रयोग करने करके उनको व्यक्तियों को उनको छात्रों को वैसा ही मिलता है जैसा कभी बताया गया, वही उनको प्रयोग करने को वहां पर प्रयोग मिलेगा। इसी प्रकार से ये परिणाम पुस्तकों में सिद्धांत लिखे हुए हैं, इन सिद्धांतों को सुन लिया, समझ लिया, अब अपने जीवन में रोज रोज के जीवन में प्रयोग कर करके देखते रहो। अरे आप लोग हो वहां वहां देखो कि आसक्ति ठीक नहीं थी, जहां कहीं भी रंज मात्र की आसक्ति होगी वो तो देगी, ये कहीं आ सकती नहीं तो कहीं शोक नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति जो उसने ऑफिस से लौट करके घर आ रहा था 5 बजे 6 बजे सतवारा घर के पास से पहुंचा मोहल्ले में तो देखा एक चौराहे के पास और भीड़ लगी हुई, चारों तरफ से घेरे हुए लोग बात करेंगे उनके साथ, और उसके भीतर वो समझ गया कि ऐसा बचा है कि कोई एक्सीडेंट हो गया, इसलिए बहुत सीरियस होकर के खड़े हो गए। तो उसने सोचा कि ऐसे एक शहर में बहुत छुट्टी रहती है, इसकी मदद में जल्दी है जरूर हो जाते हैं, ऐसे सोच करके वो अपने घर चला गया। घर पहुंच करके ऐसे स्कूटर से जा रहा था, घर पहुंच गया स्कूटर को रख दिया और दरवाजा बंद कर दिया, ऐसे भीतर पहुंच गया, तब तक एक पीछे से आया और आकर के वो दरवाजा आकर खटखटाया और उसने पूछा, दरवाजा जब खोला तो उसने पूछा कि रमेश कहीं नहीं रहता है? हाँ जी रहता है। यहाँ पे लड़ता है जब ये पता लगा कि मेरा ही पुत्र है उसका एक्सीडेंट हुआ, तब शोक हुआ, और उसके पहले एक्सीडेंट देख के आए तो मोहल्ले में किसी दूसरे लड़के के एक्सीडेंट हुआ तो कहां से अपने लड़के के जब एक्सीडेंट हो जाए तो शोक हो, क्योंकि उसने आसक्त दूसरे में आसक्त नहीं। दो व्यक्ति यात्रा करते हुए चले जा रहे, रास्ते में एक दिन ट्रेन में से किसी एक व्यक्ति ने एक दूसरे साथी का टैक्सी उठा ली और लेकर के भाग गया। उसको जब व्यक्ति ने बताया उसे ढूंढने लगा था सामान, तो लेकर के टैक्सी बुलाए, मैं तो ये दिन शादी था उसने ढूंढने में सहायता होती थी पूछा कि कहाँ गई और तो साथ गई है कि गई गई है जिसकी अटैची नहीं हुई वो तो बहुत दुखी उसने कहीं चाहती तो क्या भी ना किए और उसका बार बार ध्यान की तरफ जाए लेकिन जो जिसको उसके साथ में खा सकती है यही नहीं थी हम उसको समझा रहे लेकिन जिसको उतना दुख नहीं था और साथी के व्यक्ति नहीं बताएगा तो अपना चली जाते तो अपने दुख में सामने देखो कि जहाँ नहीं देखो कि जहाँ अपना मन है और आसक्ति है वो मोह है वहाँ वहाँ दुख है इसलिए दुख से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय ये है कि आसक्ति से और मोह से छूटने का उपाय करो इसे आप नहीं कर सकते तो दुख से नहीं छूट सकते आप लापरवाही बरतेंगे आसक्ति बनाए रखेंगे मोह बनाए रखेंगे तो ये इससे मानो दुख होते ही रहेगा और आसक्ति में भी डिग्री होती है थोड़ी आसक्ति ज्यादा थोड़ा धर्म को कम आसक्ति ज्यादा धर्म पूरे जीवन का धर्म जितना इकट्ठा किया हो बहुत आसक्ति जो निकटतम व्यक्ति होगा उसमें ज्यादा आसक्ति दूर का व्यक्ति होगा उससे कम आसक्ति इस प्रकार आसक्ति कम ज्यादा भी होती है तो जितनी कम आसक्ति उतना कम जितनी ज्यादा आसक्ति उतना ज्यादा अत्यधिक आसक्ति मैंने अत्यधिक ये भी देख लो परीक्षा करके जान रही है ये सब इनको सबको कोई नई बातें छोड़े कि तो खासकर हम लोगों को होता हम ही लोगों को होने लगा कभी बातचीत आराम करके दुख नहीं हुआ अरे हजारों वर्ष पहले भी लोगों को किसी प्रकार आसक्ति रहती थी उनको भी दुख होता था तो उन लोगों ने केवल इतना किया कि दुख क्यों होता है तो अंदर विदेश से विचार किया खोजा ढूंढा कारण पता लगाया तो पता लगा कि आसक्ति के कारण से लोगों के कारण से दुख होता है उसी कारण शोक होता है तब फिर उन्होंने ये पता लगाया कि क्या इस आसक्ति से बचा जा सकता है मोह से छुटकारा पाया जा सकता है अगर ये छुटकारा से पा जाए तो शोक से भी छुटकारा हो जाएगा तो उसका भी उन्होंने पता लगाया उन्होंने देखा कि जब तक द्वैत का बात है मैं तुम मेरा तुम्हारा इस प्रकार की जब तक बुद्धि में बात चली हुई है तब तक ये मोह बना रहता है आसक्ति बनी रहती है जहां व्यक्ति को अपने स्वरूप आत्मा स्वरूप का ज्ञान हुआ और ये देखा कि आत्मा ये सर्वत्र व्याप्त है और वो आत्मा ने ही समस्त जगत का भी रूप धारण किया हुआ है समस्त प्राणियों का भी रूप आत्मा ने ही धारण किया है आत्मा से भिन्न कहीं कुछ है ही नहीं तो देखा कि इस ज्ञान की अवस्था में फिर मोह नहीं ले जाता आसक्ति नहीं ले जाता व्यक्तियों के अन्य वस्तुओं व्यक्तियों में आसक्त नहीं होती अपने शरीर में भी होती है लेकिन कोई कम आसक्ति होती है अपने स्थूल शरीर में भी बड़ी आसक्ति मेरा शरीर है और बहुत आसक्ति शरीर में रोग लग गया तो बहुत दुखी शरीर में जोर लग गया बहुत दुखी और कभी कभी लोग इसको बड़ा अच्छा मानते हैं इस बात को कि हम तो बड़े सेंसिटिव हैं जरा सा कोई ऐसे छू देता है तो बस हम चौंक जाते हैं ऐसे बात नहीं बड़े सेंसिटिव जरा सा कोई छुए हैं बिल्कुल दूर रहेगा छू जाएगा तो जहां छू गया शरीर कहां चौंक गए जहां चौंक गए कहां बस आसक्ति के कारण दुख हो गया मन में प्रतिक्रिया उत्पन्न है जो लोग उत्पन्न हो गए शरीर में आसक्ति लक्षण है लोग इस प्रकार से जीवन जीते रहे हैं अज्ञान में जीवन मैंने कभी विचार नहीं किया कैसा हम कर रहे हैं रह रहे हैं इस प्रकार से जीवन जी रहे हैं इसमें कहां कमी है कहां दोष है उधर ध्यान नहीं देहाशक्ति की करो और जितनी देह में आसक्ति उतना ही दुख अब जब प्रसंग आ गया तो इसको बात एक बार कर देखने पहले ही बता चुके हैं फिर सुना सकते हैं कि पीड़ा और दुख में अंदर है लोग बात पीड़ा और दुख को पर्यायवाची मानते हैं कि जो पीड़ा सुख दुख तो पीड़ा जैसे शरीर में पीड़ा हुई मैंने पैर में काटा लग गया तो पैर में पीड़ा हुई और उस पीड़ा की सूचना चंद्री रंग से हमारे पे पहुंचती है और वहां हमारे मन बुद्धि को पता लग जाता है कि पैर में कहीं कोई चीज चुभ गई लग गई है और पीड़ा इस बात के लिए आग्रह करती है कि जो जहाँ व्यतिक्रम उत्पन्न हो गया है बाधा आ गई है कष्ट आ गया है तो उसको कांटे को निकालो तो पीड़ा ये कहती है कांटे को निकालो पैर की रक्षा करो बस पीड़ा का काम इतना है पीड़ा एक प्रकार के जैसे कि कहीं नगर में कहीं कोई दुर्घटना हो जाए, कोई उपद्रव हो जाए, तभी उनके पास और टेलीफोन पहुंचेगा, सारा निशान करे सरकारी घटना लग गई तो टेलीफोन ध्यान करे भेजे एस पी वगैरह को वहां पता लगा व्यवस्था करे। इसलिए टेलीफोन जाता है इस प्रकार से सीधा एक टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है ब्रेन तक वो पहुंचाती जहां कहीं हो। और अगर मान लो ट्रैक कोई व्यक्ति कहते हैं मुझे पीड़ा नहीं होती और प्रयास में बच जाऊं तो ये कोई अच्छी बात नहीं। अगर मान लो किसी का पैर अगर शुद्ध हो जाए कि कांटों को चला जाए कांटे टूट जाए तो भी उसको पता नहीं है। पैर को कोई लेकर के कोई काट दे चाकू से लेकर के किसी धारदार चीज से काट दे दर्द ही ना हो तो आप क्या नहीं की बड़ा महान व्यक्ति है। अरे आप कहेंगे कि उसके पैर में कोई रोग हो गया है डॉक्टर को दिखाओ इसमें कैसे हो गया ठीक होना चाहिए कि कोई अच्छा लक्षण थोड़ी कि पीड़ा न हो कि अच्छा लक्षण है पीड़ा होनी चाहिए। पीड़ा ही तो हमारे शरीर के अस्तित्व को बनाए रखती है, हम उन पर सुधार बनाए रखते हैं, गड़बड़े नहीं होने देते। पेट में पीड़ा होने लगी तो पीड़ा होने लगी तो कोई अच्छी बात होने लगी ये होने लगी कि हमारे शरीर में गड़बड़ी दवा खाओ ठीक हो सकते नहीं तो कैसे चल चलेगा कैसे आत्मा चले कैसे रूप बनेगा कैसे शक्ति आएगी। तो पीड़ा से इस बात की सूचना है कि हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए हम अपने आप से और मेरे शरीर रक्षा में लगे रहे इस मात्र के लिए पीड़ा पीड़ा कुछ खराब बात नहीं। अध्यात्म विद्या इस पीड़ा के निवारण के लिए कोई उपाय नहीं बताता है। पीड़ा होती है तो अध्यात्म विद्या के लिए पीड़ा होती अच्छा है। अध्यात्म विद्या ऐसी नहीं किसी व्यक्ति को पत्थर बना दे शरीर को उसमें पीड़ा ही ना हो ऐसा ध्यान विद्या नहीं पत्थर नहीं बनाती है शरीर को शरीर लगती है जैसा है वैसी लगती है उसमें कोई और विकार उत्पन्न नहीं करती। लेकिन अध्यात्म विद्या ये करती है कि जो दुख व्यक्ति का है उसे दूर करने का दावा करती है दुख दूर हो जाए। अब किसी व्यक्ति के पैर में अगर कांटा चुभ गया तो दर्द तो होगा और कभी कभी दर्द के साथ लोगों को दुख भी होता है। दुख क्यों होता है क्योंकि मेरे पैर में कांटा लग गया और शरीर में आसक्त किया तादाद में इसलिए दुख होता है। शरीर में तादाद न हो उसमें आसक्ति न हो शरीर में तो शरीर में कोई घटना नहीं घटेगी तो पीड़ा होगी लेकिन दुख नहीं होगी। इतना विवेक समझ लेना चाहिए जब आप विद्या सीख रहे हैं उसकी बात सीख ही जाए। और ये न समझने के कारण से कभी कभी लोग का उतर के प्रकार करते हैं अज्ञान के कारण से कि हमने बड़े बड़े महात्माओं को देखा है बड़े बड़े ऋषियों को देखा है ज्ञानियों को देखा है उनके भी कैंसर हो जाता है उनसे भी रोग हो जाता है और जब रोग हो जाता है तो उनको भी तकलीफ होती है। तो क्या फायदा अध्यात्म विद्या क्या फायदा महात्मा मानो कोई समझते हैं कि अध्यात्म विद्या ऐसी होनी चाहिए कि शरीर में जो पीड़ा होती हो ही नहीं शरीर में रोग लगता हो लगे ही नहीं। ये अध्यात्म विद्या का काम नहीं शरीर में रोग भी लगेंगे शरीर अंत में मंत्र भी होगी शरीर का विनाश भी होगा शरीर में रोग भी लगेंगे शरीर में कष्ट भी होगा चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो सबको एक समान हो। लेकिन अंतर ये है अज्ञानी व्यक्तियों को शरीर में कोई पीड़ा रोग आता आ जाने पर दुख भी होता है लेकिन ज्ञानी व्यक्तियों को दुख नहीं होता। तो जहां कहीं आप देखें तो शास्त्र में दुख की बात शोक की बात यही आप देखते हैं। गीता में आप देखेंगे जहां कहीं सावधानी को रोक अध्ययन करते हुए ध्यान दें तो उसमें देखेंगे कि ये पीड़ा की बात नहीं आती कि फिर व्यक्ति को फिर पीड़ा नहीं होती उसके शरीर में कोई पीड़ा नहीं होती ऐसा नहीं हाथ या नहीं व्यक्ति को शरीर में पीड़ा नहीं होती ऐसा बात नहीं आएगा। ये आएगा कि आपकी ज्ञानी व्यक्ति को दुख नहीं होता भय नहीं होता चिंता नहीं होती इस प्रकार की बातें तो आएगी लेकिन जिस शरीर में फिर उस व्यक्ति को पीड़ा नहीं होती ऐसा नहीं आएगा। ये हो सकता है कि ज्ञानी व्यक्ति को शरीर में होती हुई पीड़ा से दुख न हो ये हो सकता है। इसलिए दुख और पीड़ा ये दो अलग अलग बातें हैं इनको समझना चाहिए ध्यान देने में पता चले कि शरीर में जो कष्ट होता है वो तो शरीर एक प्राकृतिक रचना है उसमें कहीं गड़बड़ी होती है विक्रम होता है उसके कारण से उसमें पीड़ा उसका कारण तो पेट में पीड़ा होते हैं, कोई रोग हो गया है, हाथों में पैरों में पीड़ा होती है, इसके माने वहां कोई रोग हो गया है, इसके माने पीड़ा है। लेकिन अगर कोई सुख होता है तो क्या है, ये दुख कोई शारीरिक कारण नहीं है, दुख का दुख का कारण मानसिक है, मन में आसक्ति है, शरीर में आसक्ति है, शरीर से बाहर व्यक्तियों में वस्तुओं में आसक्ति है, जहां कहीं भी आसक्ति है वो आसक्ति व्यक्ति को दुखी। इसलिए यदि दुख से बचना चाहते हैं तो हमें आसक्ति से और मोह से बचना चाहिए, और मोह से बचने का क्या उपाय है उसका भी बता दिए यहाँ से कि हमें अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। धीरे करके हम पहचानें कि हम शरीर नहीं है, परमाणु बुद्धि नहीं है, आत्मा है, वो आत्मा जो सबका आत्मा है वही परमाणु है। इसलिए आत्मा में ही समस्त जगत आश्रित है, समस्त प्राणी की एक आत्मा में विद्यमान है, ये हमारा ये एक आत्मा सबका आत्मा है। सब में स्थित होकर के लोग जिन भिन्न तक इस आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन है एक ही आत्मा। इस प्रकार का ज्ञान जहां दृढ़ हुआ स्थिर हुआ उस समय फिर वो फल नहीं हो सकता, ये ज्ञान जो है व्यक्ति को मुझे आसक्ति से खड़ा कर देता है, और जहां आसक्ति न रहेगी वहां पर दुख भी नहीं होता। इसलिए हर व्यक्ति को जीवन के प्रारंभ काल में दुख से बचने के लिए ये विद्या सीखनी चाहिए, और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि हमारे जीवन में कभी दुख आएगी नहीं, बाल्यकाल से हम बहुत पता नहीं कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं, लेकिन जीवन में कभी भी दुख आ सकता है, और जब कभी दुख आएगा तो उस दुख का कैसे छुटकारा से बचेंगे कैसे, ऐसे के आदमी जब सीखे हैं कोई आसक्ति और मोह कैसे नहीं है, पर दुख का कारण आसक्ति अन्य लोग तो दुखी हो सकते हैं और करना दे, लेकिन जिस व्यक्ति को आसक्ति नहीं हो गई उस दुख का प्रभाव नहीं पड़ेगा और दुखी नहीं होगा, दुख से बच जाए। इसलिए व्यक्ति को समस्त दुखों से छुटकारा कराने वाली जो ज्ञान मिल गया है अध्यात्म का आत्मज्ञान। एक ओर तो जो मन में बुद्धि में बाह्य जगत की आंखों के कारण दुख उत्पन्न होते हैं उन सब दुखों से छुड़ा देती है, ये तो उसका निषेधात्मक लाभ है, निगेटिव साइड के लिए समस्त दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति की अध्यात्मिक जगह आने वाली, और दूसरी ओर आत्मा आनंद स्वरूप है इसलिए आत्मा का आनंद भी प्रदान करने वाली, ये भी अनुभव होता है। आत्मज्ञान होने का लक्षण ये है कि व्यक्ति को ये भी अनुभव होता है कि आत्मा जिस आत्मा पर हम पहुंच गए जिसका कि हम अनुभव करते हैं ये चेतन स्वरूप प्रकाशक स्वरूप है, सर्वज्ञ है, सर्व प्रकाशक है, ध्यान दिखाई देता है, और ये भी दिखाई देता है कि ये आत्मा आनंद स्वरूप है, स्वयं अपने आनंद का लक्षण है। स्वयं आनंद स्वरूप आत्मा होने के कारण से हमें कहीं अलग आनंद खोजने की आवश्यकता ही नहीं, जब तक हम अपने आत्मा को नहीं जानते, आनंद स्वरूप को नहीं जानते, अपने आप को हम शरीर समझते हैं तब तक हम अपने सुख के लिए धन संपत्ति व्यक्ति दस्तुपरिस्थितियां स्थिति इन सबको खोजते फिरते हैं, किसे सुख मिल जाएगा, किसे सुख मिल जाएगा, किसे सुख मिल जाएगा। लेकिन जब आत्मा स्वरूप से सिद्ध हुए तो देखा कि आत्मा परम आनंद में है, इसलिए हमें आनंद के लिए सुख के लिए अपने से भिन्न आत्मा से भिन्न किसी अनात्म वस्तु में उसकी खोज करने की आवश्यकता नहीं है। ये इसलिए इतना ही नहीं है कि आत्मज्ञान होने पर दुखों से बच जाते हैं, बल्कि परमानंद की प्राप्ति भी होती है, उससे बड़ा कोई लाभ नहीं, उससे बड़ा कोई सुख नहीं। गीता के सभी अध्याय में भगवान ने बड़े विस्तार पूर्वक की सब बात समझाई है, देखें है और नहीं कुछ आत्मा ही एक सदवस्तु है, सदवस्तु जो अपने आप अपनी प्रकार से विद्यमान हो, जिसकी एक एग्जिस्टेंस रियल हो, कोई हो ऐसी वस्तु है तो एकमात्र आत्मा ही है और वही सर्वत्र विद्यमान है, और आत्मा के अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं। जब कुछ जगत आत्मभाषित होते हैं ये सब उसी के रूप मात्र है, और रूप कारण से या आधारभूत वस्तु से कोई भिन्न वस्तु नहीं होते हैं, इस प्रकार से जगत भी आत्मा से भिन्न नहीं है, एकमात्र आत्मा ही सर्वत्र है, इस ज्ञान तक पहुंचने का प्रयास करना। अब अगले श्लोक में इस आत्मा के कुछ लक्षणों को और बताते हैं, अभी तक तो पिछले श्लोकों में तो व्यापकता एकत्व और व्यापकता के ऊपर विशेष ध्यान दिया कि आत्मा सर्वं व्यापक है, आकाश की तरह व्यापक और एक है, इसमें तो विशेष बल है। अब आत्मा की और कुछ लक्षण है